जानती? किसको लगा कि इस समय का जो अव्यक्ति मास बीता है वो एक्स्ट्रा विशेष रहा है? कुछ कुछ को, और बाकी कुछ कुछ ज्यादा बिजी रहे। मैं क्यों खास कहती, क्योंकि जैसे समय बीतता जा रहा बाबा अपना हाजरी और ही बहुत गहराई से हम सबको अनुभव कराते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर बहुत कुछ करना है। तो एक तरफ से तो हम कहेंगे कि बाबा की ये विशेष पालना मिल रही, परंतु साथ ही साथ ये भी बात है कि जो होमवर्क बहुत डिटेल में मधुबन से इस बार आया है, स्वमान की बात, फिर मंथन करने की बात और फिर योग अभ्यास की बात, वो सब जो बातें हम सबको मिलती रही है, उससे भी मुझे लगता है कि हरि के पुरुषार्थ में और तीव्र गति हुई है, जिस कारण से फिर बाबा की हाजिरी का अनुभव करना और सहज होता रहा है। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी हुई कि हर एक को चांस मिला कि एक ही मुरली से कितनी हमें बातें प्राप्त होती। 31 स्वमान की बातें एक ही मुरली में, और 31 बातें अपनी चर्निंग के लिए, मंथन करने के लिए, और 31 बातें योग अभ्यास के लिए। तो मुझे लगता था कि हम सबको ये एक सीखने का बहुत सुंदर मौका बना है, जिसमें हम एक एक बात इतना डिटेल से समझते जा रहे हैं। तो अभी जो हर रोज की मुरली होती, उससे तो एक दिन के लिए ये 3 बातें निकालना सहज हो गया ना। यदि एक मुरली से 31 बातें निकल सकती, तो हमें भी एक एक मुरली से स्वमान की जो बातें हैं वो हम बाबा से ले लेवे, और फिर साथ साथ मंथन करने की और गहराई की बातें सोचने का, और फिर तीसरी बात योग के लिए क्या क्या हमें बातें विशेष एक नवीनता के आधार से हम योग करें, तो वो भी बातें मिलती। क्योंकि अक्सर करके, बहुत करके लोग यही कहते हैं कि योग करना तो अच्छा है, परंतु मन जल्दी यहाँ वहाँ भाग के चला जाता, क्योंकि बोर हो जाते। मन को आदत है अनेक तरफ भागना। तो बाबा ने ये बात समझ करके हर रोज की मुरली में बाबा अलग अलग बातें बताते हैं, जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करके फिर उसी पर ही योग अभ्यास करें। जो आज बाबा की मुरली में था कि ज्ञान सुनना सुनाना वो तो बहुत अच्छी बात है, नियम अनुसार, टाइम टेबल अनुसार योग लगाना वो भी मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में सब उसमें भी पास है, परंतु सदा योग युक्त रहना और ज्ञान का स्वरूप बन करके एक एक बात हमारे जीवन में प्रत्यक्ष नजर आए, उसके लिए फिर बाबा का आंसर था कि आप जितना योग का प्रयोग करेंगे उस आधार पर ही आप और आगे बढ़ सकेंगे। तो एक एक मुरली से योग के प्रयोग के लिए बाबा वैसे तो अनेक बातें बता रहे हैं, परंतु हम एक बात भी उठा लेवे। किसी कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ मैं बातचीत कर रही थी थोड़े दिन पहले, तो उसने मुझे बताया कि मुझे सब तरफ से मजा आता है, शिवानी का भी मैं सुनती हूँ, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग का भी सुनती हूँ, मैं गुरु माँ का भी सुनती हूँ। तो मेरा बुजुर्ग का आयु है, तो घर पे तो अभी ज्यादा काम नहीं होता, तो कहती है कि सवेरे पहले मैं भजन सुनती हूँ और फिर ये सब मैं सुनती हूँ। आधा दिन तो मेरा इसमें बहुत आनंद में बीतता, परंतु मैं ये देखती हूँ कि क्या एक बात मैं एक दिन के पुरुषार्थ के लिए लूं, जिस पर मैं पूरा ध्यान दे करके उसका प्रैक्टिकल मैं अनुभव करूं। तो मुझे लगा कि बेशक उसको बाबा की इतनी पहचान नहीं है, परंतु जिस तरह से उसने अपने समय को सफल किया है और जिस तरह से उसने अपने जीवन पर भी ध्यान दिया है, ये भी बहुत ही सुंदर बात मुझे लगी। तो हर आत्मा जो कुछ अच्छे अच्छे फिर भी सतो प्रधान तो नहीं, परंतु फिर भी कुछ सतो संस्कार वाले होते हैं या रजो के भी होंगे, परंतु वो किस तरह से ध्यान दे करके अपने जीवन को अच्छा बना करके रखते हैं, तो वो तब जबकि प्रैक्टिकल मुझे जीवन में क्या करना है। तो इसी तरह से आज बाबा की मुरली का विशेष हम सब का ध्यान खिंचवाया कि अभी आप देखो कि कहाँ तक न सिर्फ ज्ञान का मंथन, परंतु कहाँ तक उसका आपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप दिया। और साथ ही साथ योग अभ्यास के लिए भी निरंतर हम योग युक्त होकर के योगी जीवन बिताएं, क्योंकि जीवन 2 घंटा 3 घंटे का नहीं होता, जीवन तो सदा का होता है, पूरा ही समय। तो यदि हमारा ध्यान है योगी जीवन बनाने का, तो फिर बाबा की जो बातें हैं वो हम योग युक्त होकर के वो प्रैक्टिकल करते चलें, तो सचमुच हमारी योगी जीवन रहेंगे। और उसमें भी फिर बाबा ने ये बातें जो बताई कि किस तरह से, एक तो यदि हमारा सचमुच योग की विधि राइट है, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि हम योग में बैठे हैं और बहुत शांति की अवस्था में हम शून्य हो जाते हैं, तो उसको बाबा राइट विधि नहीं कहेंगे। हाँ, आत्मा शांत हो जाए वो तो ठीक है, परंतु बिल्कुल खाली खाली शून्य हो जाए या बाबा की गोद को छोड़ के निंद्रा देवी की गोद में चला जाए, तो वो तो कोई एक्यूरेट योग नहीं कहेंगे। तो हमारा एक्यूरेट योग कहाँ तक है उसका प्रूफ, जिसके लिए हम सब अपना बाबा को कंप्लेन देते हैं कि अब तक भी कुछ न कुछ पुराने संस्कार नजर आ रहे हैं, खुद के लिए ही हम बाबा को कंप्लेन करते हैं। तो बाबा कहती है कि खुद की भी कंप्लेन्स करना तो आवश्यकता नहीं, देख करके चेक करके उसको चेंज कर लो, तो फिर आगे बढ़ सकेंगे। परंतु खुद का हम कंप्लेन बैठ करके करें बाबा को, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, कौन सी कंप्लेंट हम उसको लेके जा रहे हैं। तो अपनी भी कंप्लेंट न करें, दूसरों की भी कंप्लेंट न करें, और ड्रामा की तो बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ड्रामा तो बाबा की मीठी बेटी है, तो बाबा उसकी भी कंप्लेंट नहीं सुननी चाहता। परंतु संस्कार परिवर्तन हमारे तब हो जबकि सचमुच जो योग अभ्यास हम कर रहे हैं करेक्ट विधि से, तो उसका रिजल्ट है सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप है कि परिवर्तन आत्मा का होगा। और दूसरी बात कि प्रकृति जीत, आप सोचो कितनी बड़ी टाइटल है ये, प्रकृति पर जीत पाना, 5 तत्वों को जीतना, ये बाबा ही सिखाता। और तब वो हो सकता जब आप देहे से न्यारे हो जाओ, ये भी प्रकृति का है, तो प्रकृति से न्यारे और फिर साथ साथ प्रकृति को भी सकाश दे करके प्रकृति को भी सुख देना, तो फिर प्रकृति हमें भी सुख देंगी। हिसाब होता है जितना और उतना, जितना हमने प्रकृति की सेवा अब की उतना ही फिर हमें भविष्य में, तो क्या परंतु इस जन्म में भी बहुत ही उसका फल नजर आएगा। उस दिन एक बहन कोविड के बाद नहीं मिली है, वो फर्स्ट टाइम मिली थी, तो उसने दादी जी के लिए पूछा कि मार्च 27, 2020 में आप लोगों ने क्या अनुभव किया। तो हम उसको बता रहे थे कि कहते हैं कि प्रकृति की भी कुछ निशानियां होती है जब कोई ऐसे महान आत्मा देह का त्याग करते। तो करीब 2:30 बजे आबू में, माउंट आबू में, और मार्च के महीने में कभी बारिश नहीं आती, परंतु उस रात्रि को जबरदस्त बारिश आती रही, ऐसे आंधी तूफान जैसे। और फिर तो वो धीरे धीरे आवाज भी कम हुआ, परंतु बारिश भी धीरे धीरे कम हुई, ताकि 9 बजे तक, जबकि सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, बिल्कुल बारिश भी बंद और आवाज भी तूफान का बंद। और दादी उस बीच में करीब 3:15 बजे आत्मा उड़ के चले गए। तो जैसे कि प्रकृति सारे पृथ्वी को साफ करके फिर उस आत्मा को अपने साथ उड़ा करके लेके गई। तो ये हमारी इमेजिनेशन की बात नहीं थी, परंतु जब मैंने ये पढ़ा आज की प्रकृति किस तरह से हमारी दासी बनती है, परंतु पहले तो हम उसकी सेवा करें तो फिर वो भी दासी बने। और दादी ने तो खुद के तन की प्रकृति की भी बहुत अच्छी तरह से योगी होकर के चलाया और प्रकृति जीत बन करके दिखाया। कितने समय हम उसको कहते थे, दादी फलाने समय यहाँ पहुंचना है, फलाने समय यहाँ ये करना है। दादी मालिक, समय का भी मालिक, अपने आप ही आराम से चलती थी, जो कुछ जरूरी है वो करती थी। और फिर कभी प्लेन खुद ही डिले हो जाता था, कभी ट्रेन बिल्कुल डिले हो जाती थी, जो भी कुछ है। एक बारी तो इंदु बहन थी दादी के साथ और एयरपोर्ट पर जाना था दिल्ली, और फिर पूना की फ्लाइट आ गई, दिल्ली की आई नहीं, तो चल पड़े पूना। क्यों? क्योंकि गोविंद दादा इंतजार कर रहे थे। गोविंद दादा की आत्मा का दादी पहुंच करके उस आत्मा को छुट्टी दी, और उसी समय, इंडिया में तो सब कुछ उसी समय करते हैं, उस आत्मा को न सिर्फ छुट्टी दी, परंतु उसके शरीर को भी सारा क्रियाकर्म करके, फिर तब तक वो एक ही दिन में फिर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के दादी फिलीपींस में गई। तो प्रकृति जीत, समय भी प्रकृति की बातों में आ जाता। तो इन सब बातों पर हम भी, न सिर्फ एक दादी, दूसरी दादी के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी दादी जी के लिए, कि जब दादी गुलजार ने भोग लगाया था और वतन में दादी गुलजार जाकर के फिर संदेश लेके आई, तो कहा कि मैंने क्या देखा सीन वतन में, कि प्रकृति 5 तत्व भी दादी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप सोचो, इमेजिन करो क्या सीन होंगे, किस तरह से 5 तत्व दादी के स्वागत करें। तो न सिर्फ एक या दो या तीन आत्मा की बात की कहानी है ये, परंतु सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं, और बाबा सब हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप भी योग की विधि का पुरुषार्थ करो, तो फिर आपको भी सिद्धि वही प्राप्त हो सकती, क्योंकि बाबा सब बच्चों को उड़ा करके ले चलने आए हैं, 2 या 3 या 4 को नहीं, परंतु सारे ब्राह्मण परिवार को साथ ले चलेंगे, और बाकी भी आत्माएं आएंगी, पीछे पीछे आएंगी, परंतु घर में जाना है, सभी को लेके जाना है, किसी को भी बाबा दुख की दुनिया में छोड़ के नहीं जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। तो हम कहाँ तक आज भी अपने ये सब पॉइंट्स को देखें कि संस्कार परिवर्तन कहाँ तक हुआ, प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं, और विकारों पर हर प्रकार से विजय प्राप्त करने की भी बात बाबा ने बताई। कहाँ तक वो भी हमारा बिल्कुल क्लियरली प्रैक्टिकल चल रहा। तो बाबा की जो ये अव्यक्त मुरलियाँ चल रही है बहुत डिटेल के बाबा हमें समझाने दे रहा है कि बाबा हमसे क्या चाहता है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और रियलिटी तो ये है, मैं अपनी बात कहती कि ये सब मुरलियाँ मैंने या तो उस समय सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, और न सिर्फ एक बार, एक दो बार ही तो कम से कम पढ़ी ही होंगी। परंतु उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। मैंने सोचा कि बाबा दादियों के लिए बात कह रहे हैं, और सचमुच बाबा दादियों का तो पुरुषार्थ देख करके हम कह सकते हैं कि वो कैसे अपनी संपन्न स्थिति तक पहुंचे। परंतु आज मुझे लगता है कि बाबा रिविजन क्यों हो रही है इतनी सब मुरलियों की, क्योंकि कई हैं जिन्होंने वो मुरलियाँ कभी सुनी ही नहीं है, और कई हैं जिन्होंने सुनी है परंतु वो किया नहीं है। तो अभी फिर बाबा हमें चांस दे रहा है कि आप अभी ये सब बातें अपने जीवन के प्रैक्टिकल धारणा में लाओ। तो एक तो मुझे खास ये बात आज विशेष लगी कि बाबा कैसे हमें पुरुषार्थ क्या करना है, उसके रिजल्ट क्या होंगे, किस तरह से दिल को जैसे आईना स्पष्ट होता, इसी तरह से एक एक मुरली आज का वो आईना है जिसमें खुद को देख सकते। बाबा से पूछने की जरूरत नहीं है बाबा हमारा भविष्य में पद क्या होगा, परंतु प्रैक्टिकल खुद को देख सकते और उस अनुसार हमें और क्या करना है वो हमें फिर पता चलता। बाकी दूसरी बात मुझे ये सुनानी थी, क्योंकि बाबा की मुरलियों में कुछ कुछ कब कहानियां आती है, परंतु जो कुछ कहानियां देखी हुई है उसका थोड़ा मैं वर्णन करती हूँ। जबकि बाबा को हम कहते हैं प्यार का सागर, तो सचमुच कैसे बाबा प्यार का सागर है वो कई बातों से हमें देखने को, अनुभव करने को मिला। मधुबन 1957 में कितना छोटा होगा वो आप खुद ही सोच सकते, जबकि मैं फर्स्ट टाइम आबू में 66 में गई हूँ तो उस समय भी केवल 30 मधुबन निवासी थे, ज्यादा नहीं थे। तो 57 में तो बाबा के सामने ऐसे सारा समय सेवा करने वाले तो बहुत ही कम थे, क्योंकि बाबा ने सबको भेज दिया था बाहर सेवा करने के लिए। बाबा ने सबको कहा कि आप अपना भाग्य बनाओ, त्याग और तपस्या इतनी सभी ने की थी, परंतु अब समय है अनेक और आत्माओं को बाबा के पास ले आना। तो बाबा ने करीब करीब सबको भेज दिया था, बहुत कम रहे थे। परंतु कम होते भी बाबा की मुरली सब तक पहुंचे, ये था बाबा का प्यार कि सबकी पालना होती रहे। इतना तक जो अभी किसी ने मुझे कहा कि उन दिनों में एक उनके सामने ऐसे कठिनाई आई थी तो उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, और फिर उसको पता चला कि इस पत्र को पोस्ट करने के लिए कुछ 5-6 रुपये लगेंगे, क्योंकि लंबी बात थी। तो उसको उस समय वो भी नहीं था, तो पत्र फिर लिख करके फाड़ दिया, भेजा नहीं। तो उन दिनों में जब बिल्कुल बेगरी पार्ट चल रहा था, बाबा हर मुरली भेजते थे लंदन में। सेवा करने वाले भी ज्यादा नहीं थे, पहले तो लिखत की मुरली और फिर साथ साथ मास में एक बारी पत्र, और फिर साथ साथ सेवा के लिए जो ये बड़े चित्र फर्स्ट बने थे, कल्प वृक्ष, चक्कर आदि, तो वो बड़े बड़े थे, परंतु उनको रोल करके गोल्डन कास्केट इतना बड़ा होगा, और वो भी कोई गोल्ड का नहीं, परंतु वो गोल्डन कार्डबोर्ड का। तो वो गोल्डन कार्डबोर्ड का कैस्केट बाबा लंदन भेजते थे, और रजनी बहन को लिखते थे कि एक है पोप के लिए, एक है क्वीन एलिजाबेथ के लिए, दूसरा है तुम्हारे घर के लिए। तो बाबा सारे विश्व को याद करके वो सेवा के लिए कभी भी कोई बात में रुकावट ना आए, बाबा ने ये सोचा नहीं, बिल्कुल बाबा तो विश्व का मालिक। और फिर कभी आम भेजना, कभी टोली भेजना, कुछ न कुछ बाबा किस तरह से उस समय भी पालना देते थे। परंतु फिर उसके बाद एक और कहानी याद आई, ये है 60s की। और बाबा का कमरा छोटा सा ही कमरा था, और बाबा बहुत हल्के रीति से, क्योंकि वो सीजन नहीं थी, क्योंकि मॉनसून्स चल रहे थे तो बारिश का समय था, तो पार्टी ज्यादा नहीं थी, तो बाबा और चार पांच हम सब बाबा के साथ बैठे थे, दादी जान के साथ थी, तो दीदी मैनेजर थी यज्ञ की, उस समय मामा ने शरीर छोड़ा था, तो बाबा ही सब कुछ मैनेज करते थे दीदी के द्वारा। तो दीदी बाबा के पास कमरे में आती और कहती कि बाबा एक बहुत बुजुर्ग किसान आया है, वो आपको कुछ देने चाहता है। बाबा ने कहा भेजो बच्ची। तो आया और उसका चेहरा देखो सचमुच बहुत बहुत बुजुर्ग, और उसने एक लाल रुमाल में एक को जैसे बांध करके कुछ लाया तो बाबा को दे रहा था। तो बाबा ने कहा बच्ची इसको खोलो। तो खोला तो उसके अंदर दाल और चावल था। तो बाबा को कहता है कि मैंने अपनी खेती से मैं ये लेके आया हूँ बाबा के लिए, बाबा इसका भोजन जरूर स्वीकार करें। तो बाबा ने उसी समय दीदी को दिया और कहा कि आज जरूर इसका आप खिचड़ी बनाना। और फिर भाई को तो बहुत वो पिघल गया, बाबा से दृष्टि लेते टोली लेके फिर बाहर निकला। फिर बाबा ने कहा कि बाबा के हाथ में है किसी का भी भाग्य बनाना। तो बाबा इतना बुजुर्ग होते, बिल्कुल इतना हल्के रीति से हर एक को इस प्यार से मिले, तो वो एक दिल को छाप लगने वाली बात थी। एक और कहानी सुनाती हूँ। पूना में सेवा शुरू की थी मुसलमानों की, बाय चांस, क्योंकि कोई आए थे सेंटर पर, और दादी का शायद सारे विश्व की सेवा करने का पाठ जो नोंदा हुआ था उस समय भी नजर आता था। वैसे तो कई आत्माएं जो पूना से गई थी विदेश में माताएं, तो दादी बाबा ने दादी को ही ड्यूटी दी थी, तुम उन्हों की पालना करती रहना। तो बाबा का भी पत्र आता था, परंतु दादी का भी पत्र आता था, उसमें थ्री क्वार्टर्स तो क्लास होता था, इंदिरा थी तब तक, तो इंदिरा बहन को दादी ने कहा था तुम क्लासेस नोट करके भेजना। तो वो उसको टाइम नहीं होता था दिन भर कुछ और सेवा करे, क्योंकि पांच बच्चे थे छोटे छोटे, और रात्रि को उन सबको सुला करके फिर उसने जो ड्यूटी उठाई थी दादी के क्लासेस को लिखने की, और फोटोकॉपी नहीं था, कार्बन से तो इतना अच्छा नहीं होता था, तो जो एरोग्राम होते थे ना, तो थ्री क्वार्टर्स उसका सारा वो क्लास नोट करती थी, कई क्लासेस के सार। और फिर जो लास्ट में क्वार्टर था तो वो दादी उस पर लिखती थी कुछ न कुछ याद प्यार। तो उस आत्मा की सेवा, परंतु फिर यहाँ पर रजनी बहन की भी सेवा, उसे पालना होती रही। तो विश्व भर की सेवा का 50 से लेकर दादी का पाठ चला, परंतु मुसलमानों की सेवा भी, कुछ भाई लोग आते थे, वो बस में काम करते थे, बस की कंपनी में। तो नारायण गांव एक गांव था पूना से बाहर, बस में आते थे, फिर बस में जाते थे अपनी ड्यूटी अनुसार, तो वो सेंटर पर आने लगे थे। तो उन्होंने दादी को बुलाया था कि वहां नारायण गांव में भी आप आकर के भाषण करो। तो दादी वहां जाती रही, फिर मुसलमानों ने ही सेंटर वहां खोला और वो कार्य बहुत अच्छी तरह से चलता रहा। तो एक युगल निकला था, वो युगल बहुत अच्छी तरह से पक्के ब्राह्मण बन गए, मधुबन चले। और मधुबन में जो आंगन में वो जो दीवार है जिस पर हम सब बैठते हैं, दादी प्रकाश मणि के कमरे के आगे छोटा सा बगीचा है और वहां पर जो दीवार पर हम सब बैठते थे, वहां पर ये बहन बैठी थी और बाबा ने उसको नाम दिया था निर्मला। तो बाबा अपने कमरे से निकले और देखा कि ये बहन बैठी है और उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा उदास लग रहा था। तो बाबा वहां से निकलकर भंडारे में जाने वाले थे तो उसको बुलाया, तो वो सामने आई, बहुत खुश हो गई कि बाबा ने मुझे बुलाया है। फिर बाबा उसको कहता, बच्ची तुमको कुछ सेवा करनी है? तो उसका चेहरा खिल गया क्योंकि उसके मन में यही संकल्प था कि मैं कुछ सेवा करूं। और माताएं तो बहुत करके और सेवा तो नहीं, परंतु भंडारे की तो सेवा उनको हर प्रकार से आती है। तो उसका चेहरा देख करके फिर बाबा ने हाथ पकड़ के बाबा उसको साथ लेके गए और भंडारे में फिर भोली दादी को बुलाकर उसको बोला कि देखो बाबा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा हैंड भेजा है, तुम इसको कोई भी सेवा दे सकती। तो वो माता निर्मला इतनी खुश क्यों? क्योंकि उसको ये संकल्प था कि पता नहीं ये ब्राह्मण लोग हैं, ये हमको भंडारे के अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे। कई प्रकार के उसके वो संकल्प चल रहे थे जिस कारण से थोड़ा उदासी का चेहरा था। तो बाबा प्यार का सागर उसको देख करके, कैसे उस आत्मा को समझ करके, जान करके इस आत्मा को क्या जरूरत है, वो उसको लेकर के फिर उसको बिल्कुल बाबा ने उसको खुश कर दिया। तो आप सोचो कि बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जानी जानन हार नहीं हूं, परंतु रियलिटी तो बाप भी लौकिक हिसाब से भी बच्चों को दिल को जानते हैं। बच्चा कहे न कहे माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। तो बाबा हर आत्मा को अच्छी तरह से जानते भी हैं और हर आत्मा को जिस स्थान पर रखा है वो भी बाबा समझ करके उस आत्मा को वहां की सेवा के लिए जो निमित्त बनते हैं अथवा जो भी मददगार होते हैं बाबा के कार्य में, बाबा जान करके उन आत्माओं को रखते हैं। एक बारी दादी निर्मल शांता ने बहुत अच्छी एक कहानी सुनाई थी, क्योंकि बातचीत चल रही थी कि कोई आत्मा कहती है मुझे यहाँ जाना है, कोई कहता है मुझे यहाँ जाना है। तो बाबा ने बैठ करके छोटे से ग्रुप को बताया कि बाबा पहले भी ज्वेलर थे और अभी भी बाबा को अच्छी तरह से अपने रत्नों की परख है। तो ज्वेलर को न सिर्फ रत्नों की ज्वेलरी की परख होती कि उसकी वैल्यू क्या है, परंतु इस रत्न को कहाँ मुझे फिट करना है, किस तरह से इस रत्न की शोभा भी होंगी और दूसरे भी देख करके वो खुश होंगे। बाबा उस तरह से जवारी का काम करते और बाबा जानते हैं। तो जिस स्थान पर बाबा ने किसी भी आत्मा को रखा है, बाबा उसको अच्छी तरह से समझ करके वहां रखते हैं ताकि उसके द्वारा वहां ही वो सेवा की शोभा हो। और फिर यदि उस आत्मा को ये प्रश्न होता है क्यों, क्या, कैसे, तो फिर तो वो इतना कर नहीं पाते। परंतु यदि ये विश्वास होता है कि बाबा ने मुझे यहाँ रखा है, तो फिर बाबा को जो कुछ उसके द्वारा कराना होता है वो सहज सहज वो आत्मा के द्वारा वो हो ही जाता। तो बाबा के भिन्न भिन्न गुण, बाबा के भिन्न भिन्न कर्तव्य, तो हम जितना जितना बाबा को समझते जाते हैं और बाबा के साथ हम गहराई से संबंध रख के जाते हैं, उतना ही फिर खुद को भी प्राप्ति, परंतु उस अनुभव के आधार से हम अन्य आत्माओं को भी बाबा के नजदीक ला सकते। आप सोचो हमारी सारी सेवाओं का लक्ष्य क्या है? दो बातें, एक तो हम बाबा के समीप आए और समीप आते आते बाप समान बन सके, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। परंतु मेन बात तो ये होती कि हम अपना पुरुषार्थ करके बाबा के समीप आए। और फिर दूसरा जो बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो हम सब सारे विश्व की आत्माओं को भी बाबा के समीप लाकर जितना उनों को जो चाहिए, चाहे मुक्ति का वर्षा चाहिए, चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए, जो भी चाहिए, उन आत्माओं को वो हम प्राप्त कर सके। तो बाबा का ये कार्य जो चल रहा है, अभी कहाँ तक पहुंचा होगा? आप सोचो बाबा का कार्य कहाँ तक पहुंचा है। मुझे लगता है कि संपन्न स्थिति तक पहुंचने वाला है जल्दी। क्यों? क्योंकि 1 मिलियन आत्माएं तो ब्राह्मण जीवन को अपना करके चल रही है, और सत्यों की पॉपुलेशन आप खुद ही सोचो, तो सत्यों की पॉपुलेशन तो तैयार हो ही गई। बाकी हाँ, त्रेता के अंत तक वो तो अपने आप ही प्रजा बनती जाएंगे बहुत सहज। तो जो ब्राह्मणों की सेवा है उसमें संदेश देने की बात जो है, स्वर्ग की जो रहवासी है वो तो सहज ही वो नंबर तक पहुंच ही जाएंगे, और बाकी विश्व की सेवा रही हुई है ताकि हर आत्मा कहे कि हाँ वो एक है और हमें उसके ही बन के रहना है। क्योंकि अंत तक तो हर आत्मा को अवश्य ही पता चलेगा कि बाबा कौन और बाबा किस तरह से धरती पर आए और कैसे बाबा ने अपना कार्य किया। कई मेरे से पूछते हैं कि क्या शिव बाबा की प्रत्यक्षता सिर्फ होंगी या ब्रह्मा बाबा की भी? आप क्या समझते हैं? आप सोचो कि कई धर्मों में भगवान तो बिल्कुल उन्होंने गुम कर दिया, परंतु जिन धर्मों में भगवान का यादगार कुछ न कुछ चलता रहा, उसमें भगवान को हमेशा पुरुष के रूप में दिखाते हैं। तो यह है ब्रह्मा बाबा का यादगार। शिव बाबा तो न स्त्री है न पुरुष है, मदर फादर दोनों है। परंतु जो ब्रह्मा बाबा का यादगार चलता है, भगवान को पुरुष के रूप में दिखाया है सभी ने, तो वो इस कारण से क्योंकि बाबा ने भी ये तन चुन करके उसको अपना बनाया। तो मुझे लगता है कि अंत में न सिर्फ ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होगा, परंतु जैसे आदि में बाप दादा दोनों का साक्षात्कार होता रहा और यही उन्हों को संदेश मिलता था कि अभी इसके पास जाओ, सिर्फ बिंदु का साक्षात्कार हो कहाँ जाएंगे मालूम ही नहीं, परंतु जबकि उसके तन का भी साक्षात्कार हुआ और उन्होंने वही सामने देखा, तो फिर समझा कि हाँ हम ठीक जगह पर आए हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि ये बाकी जो रहा हुआ है वो हमें सेवा करनी होगी, सब तक पहुँचाए कि बाबा है और बाबा किस तरह से अपना कार्य कर रहे थे। पास्ट में कहेंगे क्योंकि तब तक तो समाप्ति का समय हो जाएगा। बाकी मैं देखती हूँ कि भारत की सेवा कितने ऊंची स्तर तक पहुंची है। यदि वहां के का राष्ट्रपति एक बीके हो, यदि एक वर्ष पहले भी आपको ये कोई सुनाता था कि राष्ट्रपति भारत का बीके होगा, सोचते थे कैसे होगा। परंतु अभी इस एक वर्ष के अंदर वो भी देखा है कि वो भी कैसे हो गया। और अभी मैं पोलैंड में थी तो वहाँ एक माता थी जो एम्बेसडर थी वहाँ उस देश की, तो वो ओपनिंग पर आई थी। उन्होंने नया स्थान लिया है तो वहाँ की ओपनिंग, क्योंकि 3 साल से उसका संपर्क चलता रहा है और मेडिटेशन आदि की कुछ प्राप्ति भी उसको हुई है। तो मैंने नहीं बताया सभा में, परंतु उसने सभा के बीच में बताया कि दो बातें बताई कि मेरे पास ये शिव बाबा का चित्र है, नाम शिव बाबा नहीं लिया परंतु पीछे से ज्योति बिंदु का चित्र था। तो कहा कि ये चित्र मेरे ऑफिस में भी मुझे बहनों ने, मैं जब पहुंची थी इस देश में जल्दी में ही मुझे मिली और ये दिया। तो मैं ऑफिस में आती हूँ तो मैं इसको देखती हूँ और मैं याद करती हूँ कि मैं ऐसे ज्योति बिंदु हूँ। और उससे जैसे कि मैं बहुत स्टेबल, बहुत शांत में हो जाती हूँ और दिन भर मेरा बहुत अच्छा बीतता। फिर बताया कि जो राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट मुर्मू की बात बताई और सरसाई सभा को बताया कि वो आते ही उसने सारे राष्ट्रपति भवन को सात्विक बना लिया और सब कुछ चेंज हो गया और वो सात्विक, अपना भी सात्विक भोजन, परंतु जो भी वहाँ आने वाले हैं उन्हों को भी वही सात्विक भोजन मिलता। तो मैं सोचती हूँ कि भारत में तो इतनी तक सेवा पहुँची है जो यहाँ तक आत्माएं पहुँच गई, परंतु प्रकृति भी तैयार है। आपको लगता है प्रकृति तैयार है? कुछ न कुछ, कुछ न कुछ सब तरफ होता ही रहता, होता ही रहता। तो प्रकृति भी बिल्कुल तैयार है। इतना तक जो बाबा अव्यक्त संदेश में ये भी बताता कि प्रकृति तो कहती है कि हे मेरे मालिक, आप कब तैयार होंगे जो मुझे भी इस दुख से छुट्टी मिले। न सिर्फ मनुष्य आत्माएं, भगत आत्माएं पुकार रही हैं, परंतु प्रकृति भी पुकार रही है कि मुझे इस सभी दुख से छुड़ाओ। तो प्रकृति तो तैयार बैठी है, बाकी क्या रहा? एक तो विश्व को संदेश मिले और दूसरा ब्राह्मण अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाकर रखे जो बिल्कुल अपनी हम संपन्न स्थिति तक पहुंच जाए। तो जब राजधानी तैयार होगी, बाबा के ये शब्द कई बार होते हैं, जब राजधानी तैयार होगी, हर एक ने अपनी अपनी स्थिति को ऐसे संपन्न बनाया होगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु उस संपन्न स्थिति द्वारा ही फिर हाँ विश्व का परिवर्तन होगा। उसमें भी जो बाबा आजकल हमें इशारे दे रहे हैं, एक विशेष बात कई बार मूल्यों में आती है और वो है व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करना। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। कभी बाबा कहेंगे बच्चे आप ब्रेक लगाना सीखो, आप ब्रेक नहीं लगा सकते गाड़ी में तो आप आगे कैसे चलेंगे। और एक बारी मैं दिल्ली में थी और वहाँ का एक भाई ने कहा कि मैंने नई गाड़ी ली है, आप मेरे साथ चलो। तो वहाँ ही करोल बाग का थोड़ा चक्कर लगाने के लिए हम निकले। तो मैंने रियलाइज किया कि इस भाई को ब्रेक लगाना नहीं आता रियली। वो जहाँ ब्रेक लगाने की जरूरत है वो गाड़ी को मोड़ लेता था। वापस हम आकर पहुंचे, मैंने बाबा को बहुत याद किया। तो हम वापस आकर के पहुंचे तो फिर उस समय मैंने उसे पूछा कि आपने अपनी ड्राइविंग टेस्ट पास की है? तो उसने मुझे साफ बताया, मैंने तो कुछ दे दिया, लाइसेंस हाथ में मिल गई। तो ब्रेक यदि नहीं लगाए, खुद के लिए भी नुकसान और दूसरों के लिए भी नुकसान। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। तो कभी बाबा ब्रेक का एग्जाम्पल देते हैं, कभी उस दिन बाबा ने कहा लीकेज, यदि बैटरी को पूरा बिल्कुल कनेक्शन नहीं जुड़ा है, या तो कहा लीकेज हो रही है तो बैटरी कभी फुल नहीं हो पाती। परंतु बैटरी को फुल करने के लिए कनेक्शन अच्छी तरह से जुड़े और कहां पर लीकेज ना हो। तो लीकेज के लिए बाबा ने कहा कि आपके व्यर्थ संकल्प। तो हम ये देखें कि कहां तक हमने इस बात को समझकर इस बात पर पुरुषार्थ किया है, किया है। कई बार कई बातों में हम सोचते थे ये तो नॉर्मल है ना, ऑफ कोर्स संकल्प तो चलेंगे ना, और फिर उसको हम डोंट केयर करते हैं। परंतु आप सोचो कि अंतिम घड़ियों में यदि आज से हमने वो पुरुषार्थ फुल स्टॉप लगाने का नहीं किया है, अंत में हमारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो हमारी गति क्या होगी, कहाँ हम पहुंचेंगे। तो हर बात में आजकल बाबा ये भी हिसाब बता रहे हैं, जितना अब का पुरुषार्थ और अब के स्वराज की स्थिति, उतना भविष्य में आपकी राज स्थिति होंगी। यदि अंत समय थोड़ी बहुत समय के लिए आप स्वराज की स्थिति को प्राप्त करेंगे तो वहां पर भी अंत के समय थोड़ा बहुत वो राज्य हाथ में आएगा। और बहुत काल से जिसने पुरुषार्थ करके अपना वो बनाया है रिकॉर्ड स्वराज का, तो वो भी फिर वहां बहुत काल के हिसाब तक उनको वो प्राप्ति होंगी। तो मुझे लगता है कि यदि जनवरी मास में, आधा मास तो अभी बीत गया परंतु फिर भी कुछ समय तो है, और बाबा जब कोई बात का समय देता तो अनुभव कहता है कि यदि उस समय के बीच में हम वो काम करते हैं तो बाबा की विशेष दुआएं मिलती, फिर उसके बाद अपना पुरुषार्थ करो और उसका रिजल्ट मिलता। परंतु जो समय बाबा ने नक्की किया हुआ है उस बीच में आप वो करो तो एक्स्ट्रा दुआएं बाबा की मिलती है। जैसे मुझे निजार भाई हमेशा कहते थे कि जब बाबा के सामने बताया कि सर अफ्रीका का प्रोजेक्ट होगा, तो बाबा ने कहा था कि हाँ बच्चे, एक दो वर्ष लगे भले आप जरूर करो, फिर उसके बाद का टाइम बाबा ने नहीं बताया, एक दो वर्ष। तो दो वर्ष के अंदर मुझे लगा कि नियरली सारा कॉन्टिनेंट कवर हो गया, और जिन कंट्रीज में नहीं पहुंच पाए, थोड़ी सी ही बाकी रही हुई थी, तो वहां पर आज तक भी सेंटर्स नहीं है। तो उस समय मेहनत बच्चों की, परंतु कृपा अथवा दुआ बाबा की, तो सेंटर स्थापन हो गए कितने देशों में। और फिर जहां पर उन्होंने सोचा बाद में करेंगे, थोड़ा पहले ये काम करें, और फिर बाद का समय कभी आता ही नहीं है, तो आज तक भी उन देशों में सेंटर नहीं है। तो निजा भाई हमेशा मुझे कहते, बाबा जो टाइम देता है उस बीच में जो कुछ करना है करना चाहिए। तो अभी मैं देखती हूँ कि जनवरी मास विशेष ब्लेसिंग्स का मास, जो पुरुषार्थ हमने अब तक भी नहीं किया है, इस थोड़े से समय के अंदर यदि हम अच्छा ध्यान दे करके करेंगे, उसकी बाबा की ब्लेसिंग्स के आधार पर बहुत अच्छी तरह से हम सफल होंगे। तो बाबा ने ये जो कहा है कि अभी बिल्कुल आप अपना सारे जो कर्मचारी है उनका दरबार लगाओ, हर रोज रात्रि को मन से पूछो, हे मन तुम क्यों भागा, कारण क्या था, अभी तुमको शांति से काम लेना होगा और मेरे कायदे अनुसार चलना होगा। संस्कारों से भी पूछो कि आप ये खेल क्यों कर रहे हो, उन्हों को भी शांति से चलाओ। तो हम भी यदि जो कुछ पुरुषार्थ है, चाहे संस्कार परिवर्तन का, चाहे फुल स्टॉप लगाने का, ये बाकी जो थोड़ा समय है जनवरी मास का खास, ऐसे नहीं कि बाद में पुरुषार्थ नहीं होगा, परंतु जो स्पेशल वरदानों का समय है उसका हम फायदा उठा सकती हैं। तो जो फायदा उठाने चाहे अभी भी जो हर रोज का स्वमान आदत जो भी बाबा बता रहे हैं मधुबन से वो होमवर्क आ रहा है, जितना करेंगे उतनी प्राप्ति अवश्य होगी। तो मुझे भी खुशी है कि बाबा के बच्चे सब तरफ से दूर दूर से आकर के पहुंच गए हैं, और बाबा के बुजुर्ग बुजुर्ग बच्चे भी पुरुषार्थ करके लकड़ी भी लेकर के साथ में आकर के पहुंच गए हैं। तो हर समय जब परिवार की मुलाकात होती है तो एक विशेष खुशी होती, और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सारे विश्व में भी फैलती हैं। एक ब्राह्मण अकेला योग करे और 400 ब्राह्मण 300 ब्राह्मण इकट्ठे योग करे, कितना फर्क होता। तो मुझे लगता है कि ये भी जो संगठन यहाँ बाबा ने स्थान इतना सुंदर बना कर दिया है, गिफ्ट दी है, तो आप लोग इतना सब इसका फायदा उठा रहे हैं खुद के लिए भी, परंतु आपके वाइब्रेशंस भी विश्व की सेवा कर रहे हैं जी। ओम शांति।